नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मानक और विनियामक रूपरेखा के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार 2030 तक भारत को जहाजरानी क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने के लिए नई पोत निर्माण और मरम्मत नीति शीघ्र जारी करेगी। हेमंत सोरेन सरकार सोमवार को झारखंड विधानसभा में विश्वास मत साबित करेगी। एग्जिट पोल में ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी की जबरदस्त जीत का अनुमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ बातचीत की। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के 8 और 9 तारीख को रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। दोनों नेताओं का परस्पर हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई से 2 दिन की ऑस्ट्रिया यात्रा पर रहेंगे। पिछले 41 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी। केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मानकों और नियामक व्यवस्था के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत समर्थन के वित्त पोषण के दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की जाएगी। इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान लागू करेगा। इस योजना में GH2 उत्पादन और व्यापार में गुणवत्ता, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत गुणवत्ता और निष्पादन परीक्षण सुविधाओं का विकास शामिल है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पिछले वर्ष 4 जनवरी को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,700 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन के साथ शुरू किया गया था। समाचार कक्ष से जया भारती।
भारत को 2030 तक जहाजरानी क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लिए सरकार जल्द ही नई पोत निर्माण और मरम्मत नीति लाएगी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड देश के जहाजरानी बाजार की जरूरतों से उत्पन्न जबरदस्त मांग को पूरा करने में सक्षम है। इसके कारण 2047 तक 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ड्रोन भारत के विकास, विशेषकर कृषि और मौसम निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नई दिल्ली में इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव में श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गोयल ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ड्रोन उद्योग के विकास में तेजी ला सकती है।
प्रधानमंत्री जी की भी कल्पना है कि नमो ड्रोन दीदी है, इनका अच्छा कौशल विकास हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वो भी किसानी क्षेत्र को मददगार साबित हो। ड्रोन एक माध्यम बने भारत के किसानी क्षेत्र को और आगे लेके जाने के लिए।
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए नई और आकर्षक पाठ्य पुस्तकें लाई जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का कार्य अंतिम चरण में है। कक्षा 3 और 6 की 9 पाठ्य पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं, शेष 8 पुस्तकें बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में कल पुस्तकों की तैयारी में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए सोमवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 44 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन को सौंपा था। विश्वास मत जीतने के बाद मंत्रियों के शपथ लेने देने की संभावना है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। पंजाब के आकांक्षी जिलों और खंडों में 30 सितंबर तक चलने वाला नीति आयोग का संपूर्णता अभियान कल शुरू हुआ। संपूर्णता अभियान में 6 प्रमुख संकेतक हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में पंजाब के 2 आकांक्षी जिले और 10 खंड शामिल हैं। यहाँ स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। 4 जुलाई को फिरोजपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। स्कूल की अध्यापिका अमनप्रीत तलवार ने इस कार्यक्रम को पिछड़े इलाकों के विकास के लिए बेहद लाभदायक बताया।
हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है। जो विलेजेस में रहते हैं और जिनको जॉब की जरूरत है, उनको गाइड किया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से कैसे जाके आगे काम कर सकती हैं। जो चीजें मुझे लगता है पहले पेपर वर्क में होती थी, वो इस टाइम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके प्रैक्टिकली कर रही है। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा।
इसी तरह अमृतसर जिले के अजनाला और गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जबकि बाकी खंडों में आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत की जाएगी। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। 29 जिलों में 21 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने भी कल माजुली, धेमाजी और लखीमपुर का दौरा किया। एक रिपोर्ट।
असम में पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ के कारण से 9 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वाले की संख्या 52 हो गई है। राज्य भर में 107 राजस्व क्षेत्रों के 3200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है और 57,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। राज्य सरकार ने 247 राहत शिविर और 451 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। बसा हुआ राहत कार्यों के लिए NDRF और SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। अमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
उधर मणिपुर में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए आज सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त निजी और केंद्रीय स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर हिमालय में वार्षिक 52 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष की यात्रा के लिए अधिक से अधिक तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
दर्शन के 6 दिन 24,978 तीर्थयात्रियों ने श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन किए। इस बीच हर हर महादेव और बम बम भोले का जयकारा करते हुए 6,919 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच 259 वाहनों के काफिले में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी की ओर रवाना हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल।
ब्रिटेन में कल हुए आम चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। 3 प्रमुख टीवी नेटवर्कों के एग्जिट पोल के अनुसार 14 वर्ष के राजनीतिक संघर्ष के बाद लेबर पार्टी को 410 सीटें मिलने का अनुमान है। कीयर स्टारमर की लेबर पार्टी प्रचंड जीत के साथ ब्रिटेन का नेतृत्व कर सकती है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने को मंजूरी दे दी है। ये बातचीत मिस्र या कतर में होने की संभावना है। इससे एक दिन पहले अमेरिका समर्थित कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने इसराइल के प्रस्तावों पर हमास की प्रतिक्रिया बताई थी। प्रारंभिक चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रतिनिधिमंडल भेजने को मंजूरी दे दी। क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मई 2023 के शिखर सम्मेलन में तय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में क्वाड के विभिन्न कार्य समूहों की प्रगति की समीक्षा की। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 जुलाई को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ कल बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत को गौरवान्वित करेंगे। उधर पेरिस ओलंपिक में भारत के 28 सदस्यीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा करेंगे। 2020 क्रिकेट विश्व चैंपियन भारतीय टीम का कल शाम मुंबई में जोरदार स्वागत किया गया। मुंबई हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने टीम को सलामी दी, जिसके बाद केक काटने का समारोह हुआ। खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। उत्साहित क्रिकेट प्रशंसक ध्वज थामे इंडिया इंडिया, मुंबई चा राजा, रोहित शर्मा और बूम बूम बुमराह के नारे लगा रहे थे। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री ओझा शेफाली शरण का स्थान लेंगे, जिन्हें प्रकाशन विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद चंद्रिका। विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात और मुंबई में अभूतपूर्व स्वागत आज के अखबारों में छाया हुआ है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात पर टीम की सभी व्यक्ति को अलग से दिया है कि ये यादगार पल रहे। जनसत्ता ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठे खिलाड़ियों का चित्र दिया है। वहीं नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, वेलकम चैंपियंस। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देश ने बिछाई पलके, उमड़ा जनसैलाब। नव भारत टाइम्स ने चढ़ते बाजार पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड की नियामक सेबी को सतर्क रहने की सलाह मुख्य पृष्ठ पर बॉक्स में दी है। राष्ट्रीय सहारा ने शेयर बाजार में तेजी के साथ लिखा है, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्थिर नींव के लिए अधिक न्यायाधिकरण पीठों की वकालत की। इस बीच देशबंधु लिखता है, कारोबार का ऑल टाइम हाई, शेयर बाजार में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। हेमंत सोरेन के झारखंड का मुख्यमंत्री बनने की खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हाथरस कांड पर गिरफ्तारी, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान की बड़ी खबर है। जनसत्ता लिखता है, 6 लोग गिरफ्तार, बाबा फरार। दैनिक भास्कर ने फ्लाइट सुरक्षा के लिए भारत और अमरीका के बीच जल्द ही समझौता होने की खबर के साथ लिखा है, यात्रियों का बायोमेट्रिक डाटा साझा करें, दोनों देशों की सरकारों के पास रहेगा डाटा, निजता उल्लंघन का खतरा नहीं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मानक और विनियामक रूपरेखा के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार 2030 तक भारत को जहाजरानी क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने के लिए नई पोत निर्माण और मरम्मत नीति शीघ्र जारी करेगी। हेमंत सोरेन सरकार सोमवार को झारखंड विधानसभा में विश्वास मत साबित करेगी। एग्जिट पोल में ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी की जबरदस्त जीत का अनुमान। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।